नमस्कार भारत, आज है तारीख 26 अप्रैल, दिन गुरुवार। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अमरीकी संसद में राष्ट्रवाद को लिया निशाने पर, कहा ऐसी नीतियां वैश्विक समृद्धि के लिए खतरा।
वी कैन चूज आइसोलेशनिज्म, विथड्रॉल एंड नेशनलिज्म।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ऐन वक्त पर बीजेपी ने बदले हैं कई उम्मीदवार, क्या बीजेपी जेडीएस के बीच हो चुका है कोई गुप्त समझौता? सुनाएंगे भारत प्रशासित कश्मीर में बकरवाल समुदाय के लोगों की जिंदगी का हाल।
जिंदगी हमारी खराब हो रही है, बच्चियों की जिंदगी भी खराब हो रही है, माल मवेशी हम यही काम करते हैं, क्या करेंगे, मुश्किल बहुत है हमारे पास।
होंगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमरीकी संसद में अपने भाषण के जरिए राष्ट्रवाद को विश्व समृद्धि के लिए खतरा बताया है। एक तरह से ट्रंप के एजेंडा पर चोट करने वाले इस भाषण में उन्होंने अमरीका से कहा कि अलग रहने के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से दूर न भागें। ईरान के साथ परमाणु समझौते पर उन्होंने कहा कि फ्रांस ये समझौता खत्म नहीं करेगा। वहीं पेरिस समझौते की वकालत करते हुए उन्होंने पर्यावरण का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमरीका वापस पेरिस समझौते का हिस्सा बनेगा। दरअसल ट्रंप ने पेरिस समझौते से अमरीका को अलग कर लिया था और इन दिनों ईरान के साथ परमाणु समझौता खत्म करने की धमकी भी दे रहे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है क्योंकि वे पत्रकारों के खिलाफ गलत प्रचार को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था हर साल अलग अलग देशों की प्रेस स्वतंत्रता पर रिपोर्ट और रैंकिंग निकालती है। इस साल संस्था ने बताया है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी या इसके हिंदुत्व नीति के खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है तो प्रधानमंत्री के समर्थक या ट्रोल सोशल मीडिया पर गालियां या जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। इस साल प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान नीचे आ गई है। 180 देशों में भारत इस साल 138वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट में भारतीय पत्रकारों के साथ हुई हिंसा का भी जिक्र किया गया है जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग इतनी नीचे है। मसलन पिछले साल पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या। संस्था के महासचिव क्रिस्टोफ डिलियोयर ने राजनेताओं को चेताया है कि वे पत्रकारों के साथ ऐसा बर्ताव कर बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पत्रकारिता के खिलाफ जो नफरत की आजादी राजनेता दे रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, ये आग से खेलने के बराबर है। लोकतंत्र सिर्फ सेना या टैंकों के जरिए ही बर्बाद नहीं होते, वो कमजोर होते हैं क्योंकि उनकी नींव को खोखला कर दिया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के महासचिव के शब्द। बुधवार को खबर आई थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ नए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को लेकर राजी हो गए हैं, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस संभावित समझौते की बात को नकार दिया है। उनका कहना है कि इन देशों को ये अधिकार किसने दिया। साथ ही रूहानी ने ट्रंप की पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ट्रंप कहते हैं कि ये समझौता बहुत खराब समझौता है, अगर ये खराब है तो अमेरिका की सरकार ने क्यों साइन किया था। ट्रंप कहते हैं कि ये खतरनाक समझौता है, अगर ऐसा है तो आपसे पहले के नेताओं को समझ नहीं आया। क्या सारी बुरी चीजों के खोजी आप ही हैं? आपकी ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ना आप कानून ही पढ़े हैं, ना अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की कोई पृष्ठभूमि है आपकी। कैसे कोई व्यापारी और बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन के वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर कोरिया की परमाणु परीक्षण की जगह परमाणु धमाकों की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो गई है। नुकसान इतना है कि अब ये जगह दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती। माउंट मंतप नाम की इस जगह पर भूमि के नीचे परीक्षण किए जाते हैं और ये जगह अब इतनी कमजोर हो गई है कि रेडियो एक्टिव डस्ट भूमि की दरारों से बाहर आने लगता है। अगर वैज्ञानिकों की ये बात सच साबित होती है तो उत्तर कोरिया के इस जगह को बंद करने की असल वजह सामने आ जाएगी। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने इस जगह को बंद करने का फैसला किया था, जिसे उत्तर कोरिया के परमाणु योजना बंद करने के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि वैज्ञानिकों की इस बात से सभी सहमत नहीं है। फेसबुक का दावा है कि कंपनी ने इस साल के पहले 3 महीनों में $5 अरब की कमाई की है। 2017 के मुकाबले कंपनी की कमाई में 60% की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में फेसबुक डेटा लीक की खबरें सुर्खियों में थीं और उसके बाद कंपनी की कमाई की ये पहली रिपोर्ट सामने आई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी आप इसका सीधा प्रसारण सुन रहे हैं और मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। 3 दिन के दौरे पर अमेरिका गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में अपना भाषण दिया। राष्ट्रवाद से लेकर पेरिस समझौते पर उनके विचार साफ साफ ट्रंप के अमेरिका के लिए बनाए एजेंडा से अलग थे। माना जा रहा है कि उनका ये भाषण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर हल्की चोट थी। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रही हैं सर्वप्रिया सांगवान।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत और खूब गलबहियों के बाद अमेरिकी संसद के सामने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने साफ साफ अपने मन की बात कह ही दी। यूं तो दोनों नेताओं के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन मैक्रों के भाषण से पता चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ईरान से लेकर पर्यावरण के मुद्दे पर वे अमरीकी राष्ट्रपति से सहमत नहीं है। जैसे ही मैक्रों अपना भाषण देने के लिए आए तो संसद ने 3 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते हुए उनका स्वागत किया। मैक्रों ने राष्ट्रवाद और अलगाववाद की नीतियों को दुनिया की समृद्धि के लिए खतरा बताया।
We can choose isolationism, withdrawal and nationalism.
हम अलग होना, अलग करना और राष्ट्रवाद को चुन सकते हैं। ये एक विकल्प है। हमारे डरों को मिटाने का ये एक अस्थायी हल हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद करने से हम दुनिया को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ये हमारे नागरिकों के डर को कम नहीं करेगा, बल्कि उसे और बढ़ाएगा। राष्ट्रपति मैक्रों के शब्द। सिर्फ राष्ट्रवाद ही नहीं, दरअसल 50 मिनट लंबे इस भाषण में उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के कई फैसलों पर खरी खरी कह दी। मैक्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते को फिर से अपनाएगा और वादा किया कि फ्रांस ईरान के साथ 2015 के परमाणु करार को नहीं तोड़ेगा। 200 देशों के बीच पर्यावरण मुद्दे पर हुए पेरिस समझौते से ट्रंप अमेरिका को अलग कर चुके हैं और इन दिनों ईरान के साथ परमाणु करार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। इस भाषण के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद डेविड सिसलिन ने बीबीसी से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ईरान के साथ परमाणु करार बनाए रखने के लिए ट्रंप को मना लेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों ने अमेरिका के लोगों के सामने इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते की जरूरत को रखा है, जिसकी वजह से ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। उनका भी मानना है कि समझौते के साथ कुछ और समझौते करने की गुंजाइश है। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उन्हें ध्यान से सुना होगा। सांसद डेविड सिसलिन के शब्द। ट्रंप ने हाल ही में यूरोप और चीन के उत्पादों के आयात पर नए टैरिफ लगाए हैं, जिनसे देशों के बीच व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। लेकिन ट्रंप के मुताबिक व्यापार युद्ध अच्छे हैं। लेकिन मैक्रों ने ट्रंप को भाषण में इस पर भी नसीहत दे डाली कि व्यापार युद्ध कोई हल नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ नौकरियां जाएंगी और कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के जरिए ही हल खोजना चाहिए। वहां हमने नियम लिखे हैं तो हमें उन्हें मानना भी चाहिए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुख करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनावों का। विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह से बीजेपी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं, उससे ये शक गहरा रहा है कि क्या बीजेपी और जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस के बीच कोई गुप्त समझौता हो चुका है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी जेडीएस को बीजेपी की बी टीम बता चुके हैं। कर्नाटक में क्या वाकई में बीजेपी जेडीएस के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है, सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से बीजेपी ने कई सीटों से अपने उम्मीदवारों के नाम बदले हैं, उससे यह सवाल उठा है कि क्या बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के बीच कोई गुप्त समझौता हो चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के चामुंडेश्वरी क्षेत्र से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम आखिरी समय तक घोषित नहीं किया था, और जब घोषित किया तो किसी बड़े शख्स का नहीं बल्कि एक आम कार्यकर्ता का। गोपाल राव नाम के उम्मीदवार ने बीजेपी की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालांकि पार्टी के अंदर हेमंत गौड़ा को उम्मीदवार बनाने की चर्चा हो रही थी। गोपाल राव ब्राह्मण समुदाय के और हेमंत गौड़ा वकलिगा समाज के हैं। वहीं जेडीएस के उम्मीदवार जीटी देवेगौड़ा भी वकलिगा समाज के हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने इसी तरह मैसूर जिले के 5 अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारों को बदल दिया है। बीजेपी और जेडीएस दोनों इस बात को अस्वीकार करते हैं कि यह कदम एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए है। जनता दल सेक्युलर के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने बीबीसी को बताया,
बीजेपी जो
अगर हमें हमारा लक्ष्य हासिल करना है तो वो किसी समझौते से हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें 113 सीट जीतनी है और बीजेपी को भी वही लक्ष्य है। दरअसल बीजेपी के पास इतने उम्मीदवार भी नहीं हैं। ये थे जेडीएस के कुमार स्वामी के शब्द। अंदरूनी तौर पर समझौते का शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चामुंडेश्वरी क्षेत्र के अलावा केयर नगर, हुनसूर, पिरियापटना, चामराजा और वरुणा में भी इसी तरह के बदलाव किए गए हैं। बीजेपी का भी वही कहना है कि वो जीतने के लिए खड़े हुए हैं और उनके उम्मीदवार कांग्रेस और जेडीएस दोनों के खिलाफ चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वमन आचार्य ने कहा,
मैसूर और हासन भाग में जनता दल को उसका खुद का ताकत है, हमारा भी है, तो हमने हमारा जो कैंडिडेट डाला है वो जरूर जीतने के लिए ही डाला है, उसमें कुछ सेकंड थॉट है ही नहीं। और हम जो कैंडिडेट डाला है अभी आपको एकदम ऑर्डिनरी लगेगा, मगर हम जीत के आएंगे वो भी सीट्स।
ये सही बात है कि दक्षिण कर्नाटक के जिलों में, खासकर पुराने मैसूरू इलाके में, बीजेपी का उतना प्रभाव नहीं है जितना उत्तर कर्नाटक जिलों में है। फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि इन दोनों पार्टियों के बीच पुराने मैसूरू इलाके के लिए समझौता है। हालांकि शिवमोगा और चिकमंगलूर जिलों में कांग्रेस से ज्यादा जनता दल सेकुलर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने में प्रभावशाली है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और मैसूर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मुजफ्फर असदी कहते हैं, हमें लगता है कि बीजेपी और जेडीएस के बीच समझौता हुआ है। बीजेपी को इन इलाकों में सामाजिक समर्थन हासिल नहीं है और दोनों का एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस को हराया जाना चाहिए। ये थे प्रोफेसर मुजफ्फर असदी के शब्द। पुराने मैसूर इलाके में जेडीएस इसलिए भी प्रभावशाली है क्योंकि यहाँ वकलिगा समुदाय की जनसंख्या बहुत बड़ी तादाद में है। 2006 में जेडीएस को न सिर्फ वकलिगा समाज बल्कि मुस्लिम, ओबीसी और दलितों का भी समर्थन हासिल था। अभी सिर्फ वकलिगा समुदाय का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए जेडीएस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता किया हुआ है। इसके बावजूद कुमार स्वामी मानते हैं कि वो किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनेंगे। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
कर्नाटक की चुनावी सरगर्मियों के बारे में बता रहे थे इमरान कुरैशी। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। भारत को अंतरिक्ष में हाल में कई झटके लगे हैं और अब देश के अब तक के सबसे वजनी संचार उपग्रह जीसैट 11 की लॉन्चिंग टाल दी गई है, जिसे फ्रेंच गुयाना से छोड़ा जाना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इसे वापस भारत मंगा लिया है। विदेशी लॉन्च पैड से उपग्रह का वापस लौटना एक अप्रत्याशित घटना है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसी विषय पर विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला से बात की बीबीसी संवाददाता अभिजीत श्रीवास्तव ने।
देखिए, जीसैट 11 जो है वो इसरो का बनाया हुआ सबसे भारी भरकम सैटेलाइट है, एक बहुत अहम और बहुत ही यूनिक किस्म का सैटेलाइट है। इसका लॉन्च कुरू में साउथ अमेरिका से फ्रेंच रॉकेट आर्यान 5 से होना था 25 मई को, और इसको टाला गया है। और इसका टालने का कारण बड़ा सीधा साधा है, इससे थोड़े दिन पहले ही इसरो का बनाया हुआ अपना एक सैटेलाइट जीसैट 6A जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो फेल हुआ था, वो अंतरिक्ष में खो गया था क्योंकि इसरो का उससे टच लूज हो गया था। मुझे ये बताया जा रहा है कि जीसैट 6A जो सैटेलाइट है और जीसैट 11 सैटेलाइट में कुछ कंपोनेंट सिमिलर हैं या एक से हैं, तो इसरो उसको दोबारा चेक करना चाहता है, थरली टेस्ट करना चाहता है, जिससे कि वो रीअश्योर हो जाए कि इसमें कोई कमी नहीं हो और ये फेल ना हो।
कि जीसैट 11 की खासियत क्या है, मतलब इसके जाने से भारत को क्या फायदा होने वाला था?
देखिए, जीसैट 11 जो है अभी तक का बनाया हुआ सबसे भारी भरकम सैटेलाइट है, करीबन 5,700 किलोग्राम इसका वजन था। भारत के पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जिसमें कि इतनी क्षमता हो कि इसको अंतरिक्ष में भेजा जाए, इसीलिए इसको आर्यान 5 रॉकेट से भेजना था। और ये जो सैटेलाइट है ये भारत को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने या मुहैया कराने के लिए बनाया गया था। ये बहुत एक पावरफुल हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है जो कि कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत ही एक अहम भूमिका प्ले करने वाला है आने वाले टाइम में। और इससे जो एक पूरे सैटेलाइट एरिया में कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहा है इसरो, क्योंकि ये एक अकेला सैटेलाइट कई सैटेलाइट के बराबर काम करने की क्षमता रखता है।
ये थे विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला। श्रोताओं, आपको जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना याद ही होगी। इस बच्ची का संबंध बकरवाल समुदाय से था। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में लाखों बकरवाल समुदाय के लोगों की जिंदगी जिस तरह गुजरती है, वो सामान्य लोगों की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। घुमंतू बकरवाल समुदाय खुले आसमान के नीचे कुछ दिनों के लिए अपना घर बनाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह के लिए आगे बढ़ जाते हैं। किस तरह गुजरती है इस समुदाय के लोगों की जिंदगी और क्या दिक्कतें होती हैं इनके आगे, ये बता रहे हैं माजिद जहांगीर।
रफीक अहमद खान एक तरफ खाना बनाने के लिए लकड़ी काटने की जुद्दोजहद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। वहीं पास में ही एक बकरवाल महिला चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है और रात का खाना बनाने की तैयारियों में जुट गई। मैं जब दक्षिणी कश्मीर के वेरीनाग वुमू की ऊंची पीर पंचाल पहाड़ियों को चढ़ रहा था तो जम्मू से लौटने वाले कई बकरवाल परिवार यहां अपना डेरा संभाल रहे थे। ये बकरवाल समुदाय 6 महीने ठंडे वाले इलाके कश्मीर में रहते हैं और 6 महीने जम्मू जैसे गर्म इलाके में। ये लोग अपना सफर पैदल तय करते रहते हैं। करीब 2 महीने आने और 2 महीने जाने में लग जाते हैं। इस दौरान जहां इन बकरवालों को जगह मिलती है वहां अपना डेरा जमा लेते हैं। 75 वर्ष के चचा खान सर्दी से कांप रहे थे। वो आग के आगे बैठकर बार बार कह रहे थे,
जिंदगी हमारी खराब हो रही है, बच्चियों की जिंदगी भी खराब हो रही है, माल मवेशी हम यही काम करते हैं, क्या करेंगे, मुश्किल बहुत है हमारे पास।
बकरवाल समुदाय के खाने पीने का गुजारा उनके माल मवेशियों पर निर्भर करता है। रात का खाना ये लोग अंधेरे में खाते हैं, या तो सोलर लाइट जलाकर या फिर लकड़ी जलाकर। यासिर अहमद कहते हैं,
जहाँ पे रुकते हैं तो बिना हमारे पास लाइट्स भी नहीं है, बिना लाइट की सोलर सिस्टम है जो ये सिर्फ 10-15 मिनट रहता है, तो कोई पावर भी नहीं है, तो मोबाइल्स भी सब ऑफ ही रहते हैं। जहाँ पे हम कहीं पे जाते हैं, जहाँ पे कोई छोटा सा गांव होता है जहाँ पे बिजली है, वहाँ पे हम मोबाइल चार्ज करते हैं।
मरीना बीवी कहती है कि जब हम लोग किसी जगह डेरा जमा लेते हैं तो पहली मुश्किल पानी और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का होता है।
सुबह चाय पीते हैं और रास्ते में कई जगह में लकड़ी मिलती है, कई जगह में पानी नहीं मिलता है, कई जगह लकड़ी नहीं मिलती है, सुबह की रोटी शाम तक चले जाती है, ऐसे भूखे ही गुजारते हैं, बच्चों को भी ऐसे अजाब होता है।
इस समुदाय की एक और परेशानी उनके माल मवेशी की सुरक्षा होता है। रफीक ये भी कहते हैं कि जिस किस्म की हम जिंदगी गुजारते हैं उसमें उनके बच्चे शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि सरकार ने अब जंगलों में जगह जगह नर्सरियां बनाई हैं, जिसके कारण उन्हें अब रहने के लिए जगह भी जंगलों में मुहैया नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल समुदाय की कुल आबादी करीब 12 लाख है। बकरवाल समुदाय को इस बात की कभी खबर और अंदाजा नहीं रहता है कि जब वो सुबह नींद से जागेंगे तो उन्हें अपना घर कहाँ तलाश करना होगा। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
बकरवालों की जिंदगी की कहानी बयां कर रहे थे माजिद जहांगीर। अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में सर्वप्रिया सांगवान पहुंच चुकी हैं, उन्होंने अखबार बिछा दिए हैं सारे और वो देख रही हैं। बताएं सर्वप्रिया, क्या क्या है आज क्या अखबार?
शायद अखबार बिछे हुए तो आप भी देख ही रहे होंगे कि सारे अखबारों में के पहले पन्ने पर आज आसाराम छाए हुए हैं और बेशक गलत कारणों से। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है और एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में, और 2013 से ही वे जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद थे और आखिरकार इसमें के ट्रायल कोर्ट का इसमें आ गया है फैसला। और दैनिक भास्कर ने एक पूरी एक हेडलाइन भी लगाई है कि आस्था के उत्पीड़न का विभत्स नृत्य समाप्त,
और बहुत उस पर लिखा है दैनिक भास्कर ने दूसरी एक मोटे मोटे शब्दों में है, दरिंदगी मौत तक सींकचों में। मतलब इस तरीके से
दैनिक भास्कर काफ़ी इस मामले में
बहुत ज्यादा उसको हाँ नहीं। इसके अलावा दैनिक जागरण लिखता है दुष्कर्मी आसाराम को उम्र कैद, जनसत्ता लिखता है आसाराम को उम्र कैद।
जी, किसी ने बापू नहीं लगाया इस बारे, ये भी देखने की बात है। और जो एक दूसरी खबर है, आपको याद होगा कि गोरखपुर अस्पताल में सैकड़ों इंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी, सैकड़ों बच्चों की। और जब मीडिया में मामला उछला था तो सरकार ने एक फौरी तौर पर अस्पताल के डॉक्टर कफील खान पर आरोप लगा दिए थे कि ये मौतें उनकी लापरवाही की वजह से हुई हैं। और पिछले 8 महीने से वे जेल में थे और कई बार याचिका लगा चुके थे अपनी जमानत की, लेकिन अब फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और कहा है कि उनके खिलाफ इन आरोपों को लेकर पर्याप्त सबूत नहीं है और ना ही सरकार दे पाई है।
बहुत बहुत शुक्रिया सरप्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे चलते हैं क्यूबा। जब हम ये नाम सुनते हैं तो दो छवियां हमारे सामने उभरती हैं। पहली अमेरिका से टक्कर लेने वाले एक देश की और दूसरी मुंह में सिगार दबाए सैन्य वर्दी में राज करने वाले शासक फिदेल कास्त्रो की। हाल में मिगेल डियाज कैनेल क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। पहली बार कास्त्रो परिवार के बाहर का कोई शख्स देश की कमान संभाल रहा है। कास्त्रो परिवार के हाथ में सत्ता ना होने से क्यूबा में क्या परिवर्तन आएंगे, जानते हैं आज के दुनिया जहां में, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप सोनी।
दुनिया जहान।
Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera।
लैटिन अमरीकी देश क्यूबा में 60 साल के बाद राजनीति करवट ले रही है। इतने वर्षों में इस देश ने कास्त्रो परिवार के अलावा किसी और का शासन नहीं देखा। लगभग 50 साल तक फिदेल कास्त्रो और फिर उनके भाई राउल कास्त्रो राष्ट्रपति बनकर सत्ता पर काबिज रहे और अब क्यूबा की संसद ने मिगेल डियाज कनेल को देश का नया नेता चुन लिया है। मिगेल डियाज कनेल क्यूबा की राजनीति में कोई नए खिलाड़ी नहीं है। 5 साल पहले उन्हें क्यूबा का उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला। उसके बाद वो तत्कालीन राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के दाहिने हाथ बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले भाषण में मिगेल डियाज ने कहा कि राउल कास्त्रो अभी भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे।
Él sigue siendo nuestro primer secretario como el referente que es para cualquier comunista y revolucionario cubano।
राउल कास्त्रो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया बने रहेंगे। क्यूबा को उनकी जरूरत है, वो हमें रास्ता दिखाते रहेंगे, हमारी गलतियों को सुधारते रहेंगे। साम्राज्यवाद के खिलाफ किसी भी युद्ध में राउल कास्त्रो सबसे आगे रहेंगे।
शायद यही वजह है कि क्यूबा में कई लोगों को ये लगता है कि उनके देश के हालात जस के तस रहेंगे। कास्त्रो परिवार के शासन की एक मुखर विरोधी कहती हैं,
राउल कास्त्रो इज गोइंग टू बी टेकिंग द मोर
अधिक महत्व वाले तमाम फैसले राउल कास्त्रो ही करेंगे। नई नेशनल असेंबली में उन्होंने यही बात कही है। सच तो यह है कि वास्तविक सत्ता कानूनी तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही रहेगी, जिस पर कास्त्रो परिवार का नियंत्रण है।
क्यूबा के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानना दिलचस्प होगा। क्यूबा देखकर आए वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना बताते हैं,
क्यूबा कोई और जो लैटिन अमेरिका देशों से बहुत अलग नहीं है। जहाँ तक कि वहाँ का जो सामाजिक ढांचा है या वहाँ की जो आर्थिक ढांचा है वो काफी अलग है बाकी देशों से। और जाके आप देखते हैं तो लगता है गरीबी है वहाँ पे, लेकिन जिस तरह की गरीबी हम भारत में देखते हैं या बांग्लादेश में देखते हैं उस तरह की गरीबी नहीं है। ज्यादातर लोग काम करने वाले हैं। उनका जो एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे पब्लिक हेल्थ शिक्षा पूरी मुफ्त है। वहाँ की राजनीतिक ढांचा काफी अलग है। एक अलग किस्म का समाजवाद, लोकतांत्रिक नहीं है लेकिन अलग किस्म का समाजवाद वहाँ पे फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में चलाया जा रहा था।
क्यूबा अमेरिका से सिर्फ 90 मील की दूरी पर है। चारों ओर से समंदर से घिरा हुआ, आकार में भारत के बिहार राज्य के लगभग बराबर, करीब 125 करोड़ की आबादी वाला क्यूबा दुनिया में बचे चंद साम्यवादी देशों में से एक है, जो अमेरिका की वर्षों से जारी आर्थिक नाकाबंदी की वजह से कई दिक्कतों से जूझ रहा है। क्यूबा में भारत के राजदूत रहे दीपक भोजवानी मानते हैं कि सत्ता में परिवर्तन की वजह से क्यूबा की दशा में कोई बदलाव नहीं होगा,
क्योंकि ये जो चाहते हैं जो भी धन हो, जो भी उत्पादन हो, उसका रक्षक एक ही कम्युनिस्ट पार्टी होगा और प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए बहुत ही कम जगह है। क्या क्यूबा 21st सेंचुरी मुल्क बन सकेगा? फिर रही बात जैसे वो अपना इकोनॉमी चलाते आ रहे हैं डबल करेंसी, क्यूबन लोगों के लिए एक करेंसी है जिसका मूल्य कुछ डॉलर के हिसाब से 25 है और दूसरा है जो कन्वर्टेबल क्यूबन पेसो है जो डॉलर के बराबर में बिकता है। इनके जो करेंसी चल रहे हैं साथ साथ, इनको एक करना ये बहुत बड़ी चुनौती है।
जानकारों का तर्क है कि चूंकि फिदेल कास्त्रो, राउल कास्त्रो और मिगेल डियाज तीनों एक ही विचारधारा के हिमायती हैं, इसलिए नए राष्ट्रपति के सामने वही चुनौतियां होंगी जिनका मुकाबला कास्त्रो बंधु वर्षों तक करते रहे। वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना कहते हैं,
आपको ध्यान में रखना चाहिए क्यूबा एक द्वीप है, एक आइलैंड है, उसके आसपास कोई देश नहीं है। लैंड के मामले में जो सबसे बड़ा देश है अमेरिका और मैक्सिको, और इस ब्लॉकेज की वजह से ना अमेरिका ना उनके साथ खुद व्यापार करता है ना दूसरे देशों को करने देता है, तो इससे बहुत बड़ी समस्या हुई क्यूबा को। दूसरी बात की जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो वो क्यूबा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। बराक ओबामा ने कोशिश की थी कि क्यूबा में और अमेरिका में संबंध स्थापित हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस स्थिति को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्यूबा में विपक्ष की कहीं कोई भूमिका नहीं है। मिगेल डियाज राष्ट्रपति पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। अमेरिका ने कहा कि क्यूबा की सत्ता में ये परिवर्तन अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। इन तमाम आलोचनाओं के बीच तथ्य ये भी है कि क्यूबा अपने वर्षों पुराने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के बलबूते पर अमेरिका के सामने कभी नहीं झुका और अपनी विचारधारा पर कायम रहा। अपने खानपान, गीत संगीत और खूबसूरती की वजह से क्यूबा पर्यटकों में खासा लोकप्रिय है, जो उसके लिए कमाई का एक जरिया भी है।
क्यूबा में राजनीतिक परिवर्तन पर दुनिया जहां लेकर आए थे संदीप सोनी। दुनिया जहां कैसा लगा हमें जरूर लिखें। आते हैं खेलों पर। कल आईपीएल में हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आतिशी पारी देखने को मिली। धोनी की नाबाद 70 रन और अजिंक्य रहाणे की 82 रनों की पारी की बदौलत चेन्नई ने बेंगलुरु को 5 विकेटों से हरा दिया। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था और उसने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 205 रन बनाए थे, लेकिन ये लक्ष्य भी छोटा पड़ गया और चेन्नई ने मैच जीत लिया। आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मुकाबला होगा। आइए अब जान लेते हैं अन्य खेल की खबरें राखी शर्मा से।
भारत के टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और के श्रीकांत ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत के साथ शुरुआत करते हुए दूसरे दौर में जगह बनाई। दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी साइना अगले दौर में चीन की गाओ फांगजी से भिड़ेंगी, जबकि सिंधु को चीन की ही चेन शियाओ शिन का सामना करना है। और वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले हरियाणा के एथलीटों के सम्मान में राज्य सरकार को आज एक कार्यक्रम आयोजित करना था, जिसका राज्य के कई खिलाड़ियों ने बहिष्कार करने का फैसला किया और अब ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। खिलाड़ियों के विरोध की वजह इनाम के रूप में दी जाने वाली नगद राशि में सरकार की तरफ से की गई कटौती है। प्रदेश की खेल नीति के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के किसी खिलाड़ी के स्वर्ण पदक जीतने पर उसे 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है। इसी तरह रजत पदक पर 75 लाख, जबकि कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने हाल ही में इससे जुड़ा एक नया फैसला किया है। इसके मुताबिक प्रदेश का कोई खिलाड़ी अगर सेना, रेलवे या किसी दूसरे संस्थान से जुड़ा है और उसे वहां से कोई नगद इनाम मिलता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने नगद इनाम में कटौती कर लेगी। ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया इसके बारे में कहते हैं,
देखिए जितने भी खिलाड़ी सब नाराज है इस चीज से, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। सब खिलाड़ियों के आपस में बात हुई है और जितने भी खिलाड़ी है सब ने मना किया कि हम ऐसे पैसे नहीं लेंगे, अगर सम्मान दे रहे हो तो पूरे दो।
राज्य सरकार के सम्मान समारोह में हिस्सा ना लेने वाले एथलीटों में अमित पंघल, गौरव सोलंकी, नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है और भारत में अब से कुछ ही देर में बजेंगे सुबह के 7, लेकिन विदा लेने से पहले एक बार फिर सुन लेते हैं मुख्य समाचार सर्वप्रिया सांगवान से।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमरीकी संसद में अपने भाषण के जरिए राष्ट्रवाद को विश्व समृद्धि के लिए खतरा बताया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है, क्योंकि वे पत्रकारों के खिलाफ गलत प्रचार को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। बुधवार को खबर आई थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ नए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को लेकर राजी हो गए हैं, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस संभावित समझौते की बात को नकार दिया है। उनका कहना है कि इन देशों को यह अधिकार किसने दिया। चीन के वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर कोरिया की परमाणु परीक्षण की जगह परमाणु धमाकों की वजह से पूरी तरह नष्ट हो गई है। नुकसान इतना है कि अब यह जगह दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती। फेसबुक का दावा है कि कंपनी ने इस साल के पहले 3 महीनों में $5 अरब की कमाई की है। 2017 के मुकाबले कंपनी की कमाई में 60% की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में फेसबुक डेटा लीक की खबरें सुर्खियों में थी और इसके बाद कंपनी की कमाई की यह पहली रिपोर्ट सामने आई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाया मानसी दास ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम 7:30 बजे होगी। तब तक देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com के साथ। मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।